षड गोस्वामी अष्टकम श्रीनिवास आचार्य द्वारा विरचित है। आप सबने तो सुना है ये कई बार।
कृष्ण कीर्तन गानन तन करो प्रेमामृतांभो निधि जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर
Thank you।
Thank you. दशेष दशया दसौ गमतौ
प्रश्न है या टीका है तो आप बीच में हो या थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। देखिए इतिहासकारों में थोड़ा बहुत मतभेद हो भी सकता है, कई बार ऐसे देखा जाता है क्योंकि उस समय इतने सख्ती से सब कुछ लिखा नहीं जाता था, तो हो सकता है थोड़ा कुछ अंतर हो थोड़े सालों का इधर उधर। ऐसा अक्सर देखा जाता है आचार्यों की जीवनी में, तारीखों में इधर उधर कभी अक्सर दिखाया जाता है। प्रश्न ये है कि मनोवृत्ति बदलने से प्रगति होती है या प्रगति होने के बाद मनोवृत्ति बदलती है, आप क्या समझते हैं?
इसका उत्तर तो यही है कि जैसे कि हम लोगों ने अध्ययन किया है, जिस किसी स्थान पर जैसा भी देखते हैं उसी स्थान से वो अपनी भक्ति प्रारंभ कर दे, धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति में बदलाव आ जाएगा।
बिल्कुल, तो जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, जिस स्थिति में भी हम हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर, जिस स्थान में भी हम हैं, अगर इस भक्ति पथ को हम स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे से प्रगति होगी और मनोवृत्ति भी बदलेगी। परंतु मनोवृत्ति बदलने से हमारी भक्ति में और तीव्रता से और बदलाव होना चाहिए और प्रगति होनी चाहिए। मनोवृत्ति बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अनेक वर्षों से भक्ति में हैं लेकिन प्रगति नहीं हो रही है, इसका क्या प्रमाण है? मनोवृत्ति ये लक्षण है। शुरुआत में हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति से हमारी मनोवृत्ति बदलना चाहिए। और मनोवृत्ति क्या है? वो हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से वो स्पष्ट होता है। तो अगर ये अभी तक बदला नहीं है या पर्याप्त मात्रा में बदला नहीं है तो फिर हमारे लिए सोच विचार का विषय है कि इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी मनोवृत्ति क्यों नहीं बदली, क्यों वैसे की वैसी ही है, क्यों वही पुरानी बुरी आदतें हमारे मन में हैं, क्यों हैं, कहां हम गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए भक्त को बहुत ही ईमानदार होना चाहिए अपने आप से। भक्त को अपनी ही परीक्षा करते रहना चाहिए अंदर से। जी, कैसे परीक्षा करें? हमारे दिल की परीक्षा, हृदय की परीक्षा करें कि हम इतने वर्षों से भक्ति कर रहे हैं तो क्या हमारे अनर्थों का निवारण होते जा रहा है, कि हमारी जो दृष्टि है अन्य वैष्णवों के प्रति वो बदलते जा रही है कि नहीं, क्या भक्ति के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो बदल रही है कि नहीं, दुनिया के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो बदल रही है कि नहीं, जो हमारा हमारे हृदय में तृष्णा जो है, भोग की तृष्णा, वो कम होती जा रही है कि नहीं, बुखार कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ऐसे अनेक लक्षण हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं अपने आप के। भले किसी को बताएं ना बताएं वो दूसरी बात है, लेकिन अपने आप तो हमें परीक्षा करना चाहिए कि मैं कहां कुछ गलती कर रहा हूं या कर रही हूं।
कोई मनोवृत्ति बदलने का इसका मतलब साधन भक्ति नहीं, मनोवृत्ति बदलने का साधन भक्ति, मतलब भक्ति जो है मनोवृत्ति बदलने का साधन नहीं है इसका मतलब, या तो वो भक्ति नहीं है इसलिए मनोवृत्ति नहीं बदलती, क्या मतलब? दो चीजें हो, मनोवृत्ति भक्ति करने से मनोवृत्ति बदलेगी ऐसा नहीं है इसका?
ऐसा ही है, भक्ति करने से ही मनोवृत्ति बदल सकती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर जैसे मनोवृत्ति बदल जाती है वैसे वैसे हमारे भक्ति करने का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा। मतलब हमारी अंदर से या हमारे बाहर से भी, जैसे यहाँ मध्यम अधिकारी के व्यवहार की बात की गई है, उसके भक्ति के नियमों की बात की गई है, और बाद में पांचवें से आठवें श्लोक में क्या कहा गया है, इसकी दृष्टि क्या होती है और आंतरिक विकास कैसे होता है। तो हमारे अंदर ही आंतरिक विकास हो रहा है, ये हमें परीक्षा करनी चाहिए। वो हमारी दृष्टि बदल रही है, ये भक्ति करने से ही सब धीरे धीरे होगा। परंतु जब हम ठीक से कठोरता पूर्वक हम इसको पालन करेंगे तब होगा। अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो इसमें भक्ति का दोष नहीं है, दोष न है। हाँ। मनोवृत्ति का बदलाव कृपा से होता है या साधन से होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। अब बताइए क्या चर्चा की हम?
भगवान कृपा
भगवान की कृपा से, लेकिन साथ साथ हमारा प्रयास भी होना चाहिए। लेकिन प्रयास करते करते प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए हमें, लेकिन जब प्रयास करते हैं तो किस भावना से प्रयास करना चाहिए? कि भगवान की कृपा, कि मेरे साधना जो है वो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। मैं ठीक ठाक जप करूं इसके लिए भी मुझे भगवान की कृपा चाहिए। तो हरि नाम का जप करते समय जब हम बैठते हैं, जप करने के लिए बड़े हृदय से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हरि नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हरि नाम लेने की बुद्धि दीजिए, क्षमता दीजिए कि हम भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक हरि नाम ले सकें। हम साधन करते हैं ये तो बाहरी कार्य है, लेकिन किस भावना से करते हैं वो दूसरी बात है। तो बाह्य कार्य जो है वो शुद्ध भक्त के भी वही होते हैं और नौसुखिया भक्त के भी वही होते हैं, लेकिन अंदर अंतःकरण में अंतर होता है, आंतरिक विकास में अंतर होता है। रूप गोस्वामी एक जगह बताते हैं जैसे कच्चे आम में और पके हुए आम में, दोनों आम हैं लेकिन स्वाद दोनों का भिन्न है, एक खट्टा है दूसरा मीठा है। उसी प्रकार से भक्ति वही है, हम भी भक्ति कर रहे हैं और एक शुद्ध भक्त भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? उनको भक्ति बहुत मीठा लग रहा है और हमें कभी कभी खट्टा लगता है, कभी कभी कड़वा लगता है, कभी कभी कुछ और लगता है। तो दोष परिपक्वता में है, हमारी अपरिपक्वता में। तो हम ठीक ढंग से भक्ति करेंगे, हम ख्याल रखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर सब ठीक होगा। यहां आमुख में प्रभुपाद जी कहते हैं ना, उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह उपदेशामृत प्रदान किया है। कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझने के लिए, इस आंदोलन में सही तरह से प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए रूप गोस्वामी ने हमें ये ग्रंथ दिया है। हाँ जी, गोविंद देव का प्राकट्य क्या है? नहीं, ये रूप गोस्वामी के आराध्य देव हैं, ये तो एक लीला है, सुंदर लीला है। राधा गोविंद देव है ना जो अभी विराजमान है जयपुर में, वो रूप गोस्वामी के सामने प्रकट हुए थे और फिर रूप गोस्वामी ने उनकी सेवा की थी। ये गोविंद देव हैं। यह तो प्रभुपाद जी को पूछना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी का जप होता है, जप का कैसेट है, उसमें प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र का। जप करते करते उस समय भक्तों के साथ बैठे थे, तो जप करते करते महामंत्र के बीच में अचानक वो बोलते हैं सिट प्रॉपरली, मतलब कोई भक्त ऐसे यूं ही बैठा होगा किसी भी पैर फैला के या सो रहा होगा या कुछ ऐसे तरह से बैठा होगा, तो बीच में बड़े कठोर शब्द भाव में प्रभुपाद कहते हैं सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद चाहते हैं कि हम ठीक से बैठें जप करते समय, है ना। तो लोग तरह तरह से बैठते हैं, तो हमें ऐसे बैठना चाहिए या ऐसे जो भी जप करते समय में ऐसे सब कुछ करना चाहिए जिससे कि हम ध्यानपूर्वक जप कर सकें। ये ऐसे कोई नियम नहीं है कि बस बैठ के ही करना चाहिए या इस तरह से ही बैठ के करना चाहिए, ऐसे कड़े नियम नहीं होते हरि नाम लेने में, परंतु अनुकूल्यस्य संकल्पः, तो जो अनुकूल है उसको हम स्वीकार करते हैं। क्योंकि अनुभव है कि जब व्यक्ति यूं ही बैठ जाता है, पेट पीठ टेक के बैठ जाता है, तो स्वाभाविक रूप से नींद आ जाएगी उसे, क्योंकि रुचि नहीं है ना, अभी तक नाम में रुचि नहीं है, इसलिए ये सब साधन हमें स्वीकार करने पड़ते हैं। जिस व्यक्ति की रुचि है नाम में वो कहां भी किसी भी तरह बैठ के सो के लेट के जप कर सकेगा। लेकिन क्योंकि रुचि नहीं है तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। आप देखिए जो व्यक्ति पीठ टेक के आराम जितने आराम से आदमी बैठता है ना उतना जल्दी उसको नींद आएगी। और अपने को ज्यादा कष्ट भी नहीं देना है तो ध्यान वो कष्ट के ऊपर ही जाएगा, फिर हरि नाम के ऊपर नहीं जाएगा। अरे बहुत पीठ दर्द करता है, अरे ये हो रहा है ना। तो मध्यम, न ज्यादा सुविधा होनी चाहिए न ज्यादा असुविधा होनी चाहिए। हमारे अनुभव से तो रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठना सबसे उत्तम होता है जप के समय, और हाथ जो है बीच में न करके ऐसे करना ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे कोई, ये आप किताब में नहीं पाएंगे कि ऐसे ग्रंथ कोई आचार्यों की कोई ऐसी बात नहीं कि ऐसे ही बैठना चाहिए। हमारे लिए अनुकूल है इसलिए हम करते हैं। हमारा अनुभव है कि जो भक्त ऐसे बैठते हैं धीरे धीरे पीठ भी नीचे हो जाता है और नींद आ जाती है। तो जितना हम सतर्क रहेंगे भक्ति करते समय उतना हमारा जप अच्छा हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, अनुकूल्य से संकल्प है प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो हमारे जप के लिए अनुकूल है वो कीजिए, जो जप के लिए प्रतिकूल है वो मत कीजिए। अगर ऐसे बैठने से वैसे करने से और कुछ करने से नींद आती है तो वो मत कीजिए। जिस तरह से जप ध्यानपूर्वक हो सके वो कीजिए, ठीक है। और जैसे मूल अंतिम निष्कर्ष यही है, जो आपके जप के लिए अच्छा हो वो आप कीजिए, जिस तरह से आप जप अच्छी तरह से कर सकें वो कीजिए। सबसे अच्छा ये एक जगह बैठ के करें तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कई समस्याएं हैं। कभी कभी पीठ दर्द करता आदत नहीं होती है, दो घंटे तीन घंटे लगातार बैठना पे पीठ दर्द करने लगता है, कभी किसी को घुटने दर्द करने लगते हैं, कभी कभी मन दर्द करता है, मन कहता है एक जगह कितने समय बैठोगे, उठो उठो उठो, कभी मन उठा देता है कभी शरीर उठा देता है। तो खैर निष्कर्ष ये है कि जो भी हमारे जप के लिए अनुकूल है वो करें, ठीक है। हाँ अंतिम, भक्तों के जीवन में मनोवृत्ति या दृष्टि क्या चीज है कि भक्ति को भी और भक्तों को भी हमें सही दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए तो रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत दिया है, यही तो विषय है। और खास करके जैसे यहां आप देखेंगे छठे श्लोक में, अप्राकृत वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषिद्ध, एक प्रकार की दृष्टि है। अरे ये, अरे ये तो, अरे अरे ये वैष्णव ऐसे है, वो वैष्णव ऐसे है, अरे ये तो ऐसे है ना। दृष्टि होती है ना, आदत होती है पुराने जीवन से लोगों का ऐसे दृष्टि से देखना, तो उसी दृष्टि से हम यहां भौतिक दृष्टि से लोगों को देखते हैं। तो ऐसे हर चीज में हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये शब्द मनोवृत्ति या दृष्टि का क्या महत्व है हमारे भक्ति जीवन में। सकारात्मक दृष्टि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी पहले ही श्लोक में पढ़ेंगे, उत्साहान निश्चयात धैर्यात। उत्साह क्यों होना चाहिए, हम जप करते जा रहे हैं, जब पांच साल जप किया, अरे शुद्ध भक्त हुए नहीं, छोड़ दो क्या होगा, इसमें कितने साल जप किया कुछ हुआ नहीं, नहीं। उत्साह बनाए रखना है, निश्चय बनाए रखना है, लेकिन धीरज भी बनाए रखना है, मनोवृत्ति। तो हर दृष्टि से जब मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूं, ये मेरा बल नहीं है, हम किस दृष्टि से देखते हैं, हर चीज को, तो हर क्षेत्र में हमारी मनोवृत्ति का महत्व है। सकारात्मक दृष्टि हमेशा रखनी चाहिए। ये हम शुद्ध भक्त बनेंगे एक दिन भगवान की कृपा से। हाँ जी, हाँ जी जी।
प्रशांत माता जी ने एक बार प्रश्न किया था, बाहर आप लोग प्रचार करने जाते हो और आपकी एक सभ्यता देख रहे हो कि युद्ध से आगे पर पूछ रहे, तो आपको क्या उत्तर दोगे? तो उनका कहते का प्रश्न था, यदि कोई पूछ रहे कि आप लोग जो श्री गोस्वामी पाद के जो भी भावना है, जो भी स्वभाव, जो भी प्रतिक्षा है,
अगर कोई प्रश्न करे कि आप के रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में सही तरह से चल रहे हैं, हमारा उत्तर होना चाहिए प्रयास तो कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रयास तो कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर दोष हो सकती है, लेकिन आदर्श तो वह रखा है, प्रयास कर रहे हैं। वेशभूषा अलग, ये अनुकरण और अनुसरण में अंतर होता है। अनुकरण मतलब ठीक जैसे उन्होंने किया था वैसे हम करें, नकल करना। अनुसरण का मतलब है पद चिन्हों में चलना, मतलब उनके मूल शिक्षाओं को स्वीकार करके हमारे देश काल पात्र के अनुसार उसका प्रयोग करना या उपयोग करना, ये मेन बात है। तो जो मुख्य सिद्धांत है वो कभी बदलते नहीं है, परंतु देश काल पात्र के अनुसार वेशभूषा आदि बदल सकती है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बदल दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले गैरवे वस्त्र वैष्णव नहीं पहनते थे, नहीं संन्यास लेते थे, जनेऊ नहीं था, तो उस समय केवल सफेद वस्त्र होते थे और बाबा जी दीक्षा होती थी। केवल महाप्रभु ने संन्यास लिया, महाप्रभु के बाद में सभी केवल बाबा जी वेश में थे, उसके बाद जितने भी हाँ, परंतु उनका पोशाक उस प्रकार से था, असली बाबा जी उस समय वो थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि अपसंप्रदायों की वजह से जैसे औल बौल आदि वैष्णव लोग बड़े बदनाम हो गए थे, जो सही वैष्णव थे उनको भी गलत दृष्टि से देखा जाता था समाज में। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सोचा कि इनको गहरे वैष्णवों को गहरे वस्त्र प्रदान करने से, जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी हैं, तो समाज के लोग की जो दृष्टि है वो थोड़े बदल जाएगी, थोड़ा सम्मान से देखना शुरू करेंगे और समझेंगे कि ये भी ये साधारण कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये प्रामाणिक है। इसलिए उन्होंने जनेऊ भी प्रदान किया उपवीत। इसका कारण ये था, ये बताने के लिए कि वैष्णव भी कोई ब्राह्मण से कम नहीं है। सिद्धांत तो ये है कि वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है, लेकिन प्राकृत दृष्टि अप्राकृत वैष्णव है, प्राकृत दृष्टि निषिद्ध। तो बाहर के लोग वैष्णव को प्राकृत दृष्टि से देखते हैं कि अरे ये तो शूद्र है, ये वैष्णव शूद्र है। अरे वैष्णव के लिए ऐसा कुछ, ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो बाहर के लोग ऐसे देखते थे, तो भक्ति सिद्धांत ने कहा नहीं, इसको भी उपवीत दे दो दूसरी दीक्षा से, अभी लोग समझेंगे कि ये इसको वर्ण आदि की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार से संन्यास, संन्यास उन्होंने प्रचार के लिए स्वीकार किया और संन्यास देना भी शुरू किया, जैसे महाप्रभु ने भी प्रचार हेतु ही संन्यास लिया था, अन्यथा संन्यास तो वर्जित है, कलयुग में। तो देश काल पात्र के अनुसार हमारे संप्रदाय में ऐसे कभी कभी डिटेल्स में बदलाव किए जाते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत कभी बदलते नहीं हैं। तो रूप गोस्वामी के मूल सिद्धांत वही हैं, केवल भले हम कपड़े अलग से पहन रहे हों या रूप गोस्वामी के समय भले कंप्यूटर न हुए हों, हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, सन्यासी लोग उस समय रूप गोस्वामी कभी हवाई जहाज में नहीं गए, लेकिन यहां सन्यासी जाते हैं क्यों? प्रचार हेतु। तो सिद्धांत वही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री उपदेशामृत की जय। तो कल हम 4:30 बजे